शांति, ओम शांति। कल हम सभी प्यारे ब्रह्मा बाबा के 56वीं अव्यक्ति दिवस मनाएंगे। 18 जनवरी 1969 को बाबा अव्यक्त हुए थे और हर साल हम 18 जनवरी बहुत ही विशेष रूप से मनाते हैं। आपने देखा होगा पांडव भवन के आंगन में कैसे फूल सजाए जा रहे हैं, बाबा के कमरे में, चाहे आंगन में, चाहे झोपड़ी में, चाहे हिस्ट्री हॉल में, चाहे शांति स्तंभ पर, चारों ही धामों में कैसे ब्रह्मा बाबा को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और कल का जो विशेष दिन है, पूर्ण रूप से साइलेंस का दिन होगा। आप सभी से भी निवेदन है कि सब साइलेंस में ही रहेंगे। सवेरे से ही बहुत सारे भाई बहने शांतिवन से भी आ जाते हैं और अमृत वेला 18 जनवरी को हम ओम शांति भवन में रखते हैं, ताकि अमृत वेला सब ओम शांति भवन में कर सके, क्योंकि बहुत आ जाते हैं। तो कल का क्या प्रोग्राम रहेगा वो हम आपको आज ही बता देते हैं, ताकि कल शायद समय ना भी मिले। तो कल सुबह जैसे 7 बजे मुरली होती है वैसे ही होगी, 6:30 से योग होगा। पहले अमृत वेला योग होगा यहाँ ही, फिर 6:30 से योग, और फिर 7 बजे मुरली क्लास, और फिर 8 बजे बाप दादा को भोग लगाया जाएगा। शशि बहन जी भोग लगाएंगे और फिर संदेश भी सुनाएंगे। और संदेश के बाद जो मुख्य भाई बहने हैं, क्योंकि शांतिवन से कई मुख्य भाई बहने भी आ जाएंगे, तो ओम शांति भवन बाबा के कमरे में वो जाएंगे। आप सभी नहीं जाएंगे, केवल कुछ मुख्य भाई बहने ही जाएंगे। यहाँ से भोग के बाद उठकर बाबा का जो कमरा है ओम शांति भवन में, वहाँ जाएंगे, फिर शांति स्तंभ पर आएंगे। तब तक आप सभी भाई बहने शांति स्तंभ पर पहुंचेंगे, और भाइयों का शांति स्तंभ पर जाने का स्थान जो इंद्रप्रस्थ के पीछे का छोटा दरवाजा है, वहां से भाई एंटर करेंगे और शांति स्तंभ के दाएं तरफ खड़े होंगे। और फिर बहने जो डिस्पेंसरी का स्थान है वहां से अंदर जाएंगे और बाईं तरफ शांति स्तंभ पर खड़े होंगे, और फिर हम बाबा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और तो पहले मुख्य भाई बहने जाएंगे ओम शांति भवन बाबा के कमरे में, फिर शांति स्तंभ पर आएंगे। तब तक आप सभी भी धीरे धीरे शांति स्तंभ पर आएंगे, अपने चप्पल जूते सब बाहर रखेंगे, व्यवस्थित रखेंगे, और फिर पांडव भवन बाबा के कमरे में जाएंगे, बाबा की झोपड़ी में जाएंगे। और कल जो नाश्ता मिलेगा वो उसमें 4 खजूर मिलेंगे, नारियल, आधा सेब, 1 केला और गाजर वाला दूध, वो सभी को मिलेगा। और अंदाज है कि लगभग 4,000 तक भी आ जाए नीचे से, कई स्थानों से, तो इसलिए थोड़ी बहुत व्यवस्था भी जरूरी है। और जो भी भाई बहने बाहर से शांतिवन से आएंगे या यहाँ के भी सेवाधारी हैं और जो भी पार्टी में आए हैं, वो सब ऊपर के डाइनिंग हॉल में कल जाएंगे, आज ही ये प्रैक्टिस करें। नीचे कोई भी नाश्ता नहीं करेंगे, सब ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में जाएंगे, क्योंकि नीचे मधुबन निवासी होते हैं, कई वरिष्ठ भाई बहने भी आते हैं, तो बाकी जो भी आएंगे पार्टियों में आए हैं या शांतिवन से आएंगे, वो सब बड़े डाइनिंग हॉल में ये गाजर वाला दूध स्वीकार करेंगे। और फिर 10 बजे ज्ञान सरोवर के सारे भाई बहने आएंगे, और डबल विदेशी भी लगभग 300 है जो आ गए हैं 18 जनवरी के लिए। तो उन सबकी तो इच्छा थी हम सुबह सुबह आई यहाँ मुरली सुनने, लेकिन फिर इतनी व्यवस्था करे हेडफोन आदि की, तो उन सबको कहा है कि आप 10 बजे आएं। तो 10 बजे ज्ञान सरोवर के डबल विदेशी भी आएंगे और ज्ञान सरोवर निवासी भी आएंगे, और सब लाइन में कैसे बाबा के कमरे में जाएंगे, और 3 मिनट ही केवल वहाँ बैठना है और फिर वापस निकलना है, क्योंकि बहुत भाई बहने होंगे इसलिए उससे ज्यादा नहीं बैठेंगे, पर बिल्कुल व्यवस्थित रूप से शांति में खड़े रहेंगे जब तक आपका टर्न आए। और अगर इसी बीच आप चाहते हैं कि मेरा टाइम अब टर्न बहुत देर से आएगा, तो नाश्ता आप पहले कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, लेकिन शांति स्तंभ पर आने के बाद फिर बाबा के कमरे में जाएंगे। और फिर दिन में 12 बजे तीनों स्थानों पर भोग लगेगा, शांतिवन में भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, ज्ञान सरोवर में भी लगेगा। और दिन में 12:30 बजे पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन में ब्रह्मा भोजन भी होगा। और जैसे आपका हमेशा बाबा मिलन के दिन सब पहले शाम को 5 बजे सूरज भाई का क्लास होता है, फिर 6:15 बजे भोग लगता है, फिर 6:30 बजे बाबा के मावा के सुनते हैं, तो वो वैसे है वैसा ही रहेगा। फिर भी कल आपको बताया जाएगा, क्योंकि काफी सारे भाई बहने आ जाएंगे और भी। तो आज हम बाबा की मुरली सुनते हैं। आज तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है। कई लोग पूछते हैं ना कि आप लोग क्या सेवा करते हो, क्या सेवा करते हो, क्योंकि वो समझते हैं कि हॉस्पिटल बांधना, स्कूल खोलना, या कुछ जैसे धर्मशाला बनाना, फ्री लंगर लगा के भोजन खिलाना, यही सेवा होती है। लेकिन बाबा ने तो इतनी ऊंची सेवा हमें दी है। कौन सी सेवा दी है? सारे विश्व को परिवर्तन करने की सेवा, और उसमें भी विशेष भारत की को कैसे स्वर्ग बनाना, राम राज्य बनाना, उसके लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाया है। तो हम नशे से कहते हैं कि हम अपने तन मन धन से श्रीमत अनुसार इस भारत को खास और सारे विश्व को पवित्रता, सुख, शांति का हम अनुभव कराते हैं या प्राप्त कराते हैं। तो इतनी बड़ी सेवा हम करते हैं, सारे दुनिया को बदलने की सेवा, तो वो सेवा भगवान को की सेवा और कोई सिखा नहीं सकता। बाकी वो तो कई प्रकार की सोशल सेवाएं हैं, तो चरित्र निर्माण की सेवा ये भगवान ही बच्चों को सिखाते हैं। तो इसीलिए आज बाबा ने विशेष हम बच्चों का ध्यान खिंचवाया है कि आप कितनी बड़ी सेवा पर हो, तो उस सेवा को हम समझकर सदा इसी में तत्पर रहें, यही हम बच्चों का कर्तव्य है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सेवा, सेवा आज बाबा ने बहुत ये कहा है। आज 17 जनवरी 2025 है। मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो। अब सेवा भावना कब आएगी? जब हम सचमुच अपने को सर्वेंट समझेंगे ना, मैं मालिक हूँ, हाँ मैं ऑर्डर खाली करूंगा, ये तो नहीं ना। सेवा करना माना निर्माण होना, सेवा करना माना आज्ञाकारी होना, सेवा करना माना ऑलराउंडर होना, सब प्रकार की सेवा होती है। तो तो सत बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो, तुम्हें अपने तन मन धन से श्री मत पर इसे राम राज्य बनाना है। प्रश्न है, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है? सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? हम ही सच्ची अलौकिक सेवा करते हैं, तो कौन सी है वो सेवा? उत्तर, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्री मत पर पावन भूमि सुख धाम की स्थापना कर रहे हो। मन मत पर नहीं कर रहे, श्री मत पर, भगवान ने जो हमें मत दिए उस अनुसार तुम बच्चे गुप्त रीति से श्री मत पर पावन भूमि सुख धाम की स्थापना कर रहे हो, यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्री मत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। सब रावण की जेल में पड़े हैं, सब तो सबको रावण की जेल से तुम छुड़ाते हो, पर सब श्री मत पर, भगवान ने ये सेवा हमें दी है। इसके लिए तुम क्या कर रहे हो? पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। ये तो बहुत बड़ा हम बच्चों का कार्य है, पावन बनकर औरों को पावन बनाते हैं। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाओ। तो भक्त लोग पुकारते हैं कि हम नैनहीन हैं, हमें राह दिखाओ, और प्रभु ईश्वर ये कहकर उनको पुकारते हैं। ओम शांति। हे प्रभु ईश्वर परमात्मा कहना और पिता अक्षर कहना, हम लोग तो बाप कहते हैं, बाबा कहते हैं, पिता कहते हैं, और भक्ति मार्ग में भक्त क्या कहते हैं? प्रभु ईश्वर परमेश्वर, इस रूप से गॉड, ये शब्द यूज करते हैं। तो हे प्रभु ईश्वर परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है? कौन सा फर्क, कौन सा आपको अच्छा लगता, अक्षर प्रभु कहना या बाबा कहना? हाँ बाबा। लेकिन आज बाबा ने और भी कहा है, हे ईश्वर हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है। भक्ति मार्ग में हे प्रभु कहते तो बहुत रिगार्ड से कहते हैं। अब हम बाबा कहते हैं तो ये बड़ा ऑर्डिनरी शब्द लगता है, क्योंकि हर पिता जैसे बाबा है, पिता है अपने बच्चों के लिए, तो ऑर्डिनरी लगता है। लेकिन हे प्रभु कहो तो जैसे बहुत बड़ी बात लगती है। तो हे ईश्वर हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, और फिर उनको पिता कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण लगता है, क्योंकि हरेक को पिता है, प्रभु तो एक ही है, पिता तो हरेक का अपना अपना है, तो ये तो फिर कॉमन शब्द हो जाता है। तो पिता अक्षर बहुत साधारण है, पिताएं तो ढेर के ढेर है, लेकिन हम क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि बाबा कहने से अपनापन लगता है। हे प्रभु कहना जैसे बहुत दूर की बात है, पता नहीं प्रभु कहाँ है, लेकिन वो हमारा है, हमारा पिता है, हमको वर्षा मिलता है, तो ये कहने से बाबा से प्यार जुड़ता है। तो बाबा कहते हैं पिताई तो ढेर के ढेर है, प्रार्थना में भी कहते हैं हे प्रभु हे ईश्वर, अब बाबा क्यों नहीं कहते? बाबा क्यों नहीं कहते? है तो परम पिता ना, पिता माना बाबा, तो है तो परम पिता ना, परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है, छोटा अक्षर पड़ जाता है, प्रभु ईश्वर बड़ा लगता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है, वो परम आत्मा है, बुलाते हैं हे प्रभु हम नैनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती है बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर हल्का लगता है। यहाँ तुम जानते हो बाप आकर समझाते हैं, लौकिक रीति से तो पिताई बहुत है, पर बुलाते तो है भक्ति मार्ग में भी, पिता तो कह के बुलाते हैं ना, परम पिता। फिर क्या कहते हैं, बुलाते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, ऐसे भी कहते हैं। तो कितना साधारण अक्षर लगता है माता पिता, माँ बाप तो अनेकों है ही, ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं वो क्या नहीं कर सकता है, लगता है कि वो बहुत बड़ी अथॉरिटी है, प्रभु ईश्वर ये बड़ा शब्द उनको लगता है, तो वो क्या नहीं कर सकता है समझते हम। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है, बाप रास्ता बहुत ही ऊंच सहज बतलाते हैं, है बहुत ऊंच रास्ता लेकिन बहुत सहज रूप से बताते हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मी भूत हो गए हो, अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूँ। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि आकर के पतित से पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा पर, तुमने मुझे पुकारा पतित पावन आओ, तो मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा पर तुमको पावन बनाने। तुम बच्चे भी सब भारत की अलौकिक सेवा में हो, जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकते, और सेवाएं तो सारे सब करते हैं लेकिन ये जो सेवा हम करते हैं बाबा की श्रीमत पर ये कोई नहीं कर सकता, जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर नहीं सकते तुम भारत के लिए ही करते हो, खास भारत और आम तो सारा विश्व है ही, तुम भारत के लिए करते हो, श्रीमत पर पवित्र बन और भारत को पवित्र बनाते हो। खास बापू गांधी की भी आश थी कि राम राज्य हो, अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना न सके, तभी बाबा कहते हैं ना बापू जी का भी बापू जी वही राम राज्य बना सकता है, कोई मनुष्य नहीं बना सकता राम राज्य। तो अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना न सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कह क्यों बुलाते हैं, उनको ही बुलाते हैं ना कि आकर के पावन बनाओ और आकर के सचमुच आप ही राम राज्य स्थापन करो भारत में, नहीं तो क्यों बुलाते उनको। अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है, सबको प्यार है, डबल विदेशियों को भी भारत के लिए कितना प्यार है, अभी भी देखो कुंभ मेले में कितने विदेशी आ गए, भारत वाले तो जा ही रहे हैं लेकिन विदेशी भी कोई कम नहीं है जो कुंभ मेले में आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं क्योंकि भारत के लिए बहुत प्यार है। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है, सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की तुम सेवा करते हो। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं जो बापूजी चाहते थे, वो हद का बापूजी था, ये फिर है बेहद का बापूजी, ये बेहद की सेवा करते हैं, ये तुम बच्चे ही जानते हो, हम सब बेहद की सेवा करते हैं और वो बापूजी का भी बापूजी इतनी बड़ी सेवा करता है, सारे विश्व को पवित्रता सुख शांति मय बनाता है, ये तुम बच्चे ही जानते हो। पर तुम्हारे में भी नंबर वार ये नशा रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे, है सबको नशा, बाबा कहते नंबर वार नशा, यहाँ देखो हाथ उठा रहे हैं बहुत अच्छा, तो ये नशा रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे, गवर्नमेंट तो तुम गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, अभी सरकार भी ये कहते रहते ना, आते हैं हमारे पेविलियंस में आ रहे हैं, मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, तो कहते सचमुच आप लोग ही बड़ी सेवा कर रहे हो, बाकी तो चलो सेवा कर रहे हैं लेकिन आप लोग बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। तो ये नशा रहता है कि हम राम राज्य बनाएंगे, गवर्नमेंट के भी तुम सर्वेंट हो, वो खुद ही कहती है सरकार हम नहीं कर पाते हैं वो आप करते हो, वो खुद ही कहते हैं गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो, अब हम दैवी गवर्नमेंट बनाते हैं, तुमको भारत के लिए फखुर है, जानते हो सतयुग में ये पावन भूमि थी अब तो पतित है, तुम जानते हो अभी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि व सुख धाम बना रहे हैं, सो भी सुख धाम बना रहे हैं, पावन भूमि बना रहे हैं, सो भी बाबा कहते गुप्त, ना किसी को पता नहीं चल रहा है कि हम कैसे भारत को पावन बना रहे हैं, सुखधाम बना रहे हैं। सो भी गुप्त, श्रीमत भी गुप्त मिलती है। है तो सब श्रीमत के आधार से, भगवान की श्रीमत के आधार से, लेकिन गुप्त है। भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो, श्रीमत पर तुम भारत की ऊंचते ऊंच सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो। कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, भारत छोड़ो भारत छोड़ो अंग्रेजों के लिए ये भारतवासियों ने पुकारा, तो अंग्रेजों ने क्या किया, वो जो जो आंदोलन ऐसे कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया। हाँ, उनको फिर फ्रीडम फाइटर कहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं वो जेल में गए। कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, अब हम थोड़ी जेल में जाएंगे। हम तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं है, तुम्हारी तो है ही रूहानी बात। वैसे ही दुनिया इस समय भारत खास रावण की जेल में तो है ही ना। तो बाबा कहते तुम ऐसे उस जेल में नहीं जाएंगे कि हम राम राज्य स्थापन करें तुमको जेल में भेजेंगे, नहीं। तो तुम्हारी तो है ही रूहानी बात, तुम्हारी लड़ाई भी है पांच विकारों रूपी रावण से, जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है। तुम्हारी ये सेना है, लंका तो एक छोटा टापू है, ये सृष्टि बेहद का टापू है। हाँ, बेहद का टापू है ये सृष्टि। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो, ये तो तुम जानते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम शिव शक्तियां हो, सेवाधारी हो, तुम शिव शक्तियां हो। शिव शक्ति तुम गोप भी हो, खाली बहने नहीं है शिव शक्ति, भाई भी है शिव शक्ति। शिव शक्ति तुम गोप भी हो, तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। आगे चल, सबको पता पड़ेगा। जब बाबा की ये मुरली चली, साकार बाबा ने सुनाई, उस समय लोगों को इतना समझ में नहीं आया, लेकिन अभी समझ रही है ना। तो बाबा कहते आगे चल, सबको पता पड़ेगा कि तुम कितनी बड़ी सेवा कर रहे हो। अब ये व्यसन मुक्ति की सेवा कितनी बड़ी चल रही है भारत में मालूम होगा ना आपको। व्यसन मुक्ति गवर्नमेंट ने छुट्टी दी है ब्रह्मा कुमारियों को कि व्यसन मुक्ति की सेवा करो, तो ये गवर्नमेंट को मदद है ना व्यसन मुक्ति की सेवा। तो बाबा कहते आगे चल, सबको पता पड़ेगा तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा। तुम गुप्त हो, गवर्नमेंट जानती ही नहीं कि ये बीके तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। अभी तो समझ रही है सरकार भी, भारत सचखंड था, अब झूठ खंड है। सच तो एक ही बाप है, कहा भी जाता है भगवान के लिए, गॉड के लिए क्या कहते हैं, गॉड इज ट्रुथ। तो सत्य सच तो एक परमात्मा ही है, तुमको नर से नारायण बनाने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। वो सत्य बाप तुमको सत्य ज्ञान देकर सत्य नारायण बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिख दी है। कहते हैं राम ने बंदर सेना ली, कौन सी बंदर सेना है, बाबा कहते हैं तुम पहले सब बंदर मिसल थे ना, पांचों विकार थे सबके अंदर, तो सब बंदर मिसल थे। एक सीता की तो बात ही नहीं है, सब सीताएं रावण की जेल में पड़ी है। बाप समझाते हैं कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए राम राज्य स्थापन करते हैं। अब इसमें कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं है, राम राज्य स्थापन करने में कोई तकलीफ नहीं है। भारत को अंग्रेजों से छुड़ाने लिए कितनी तकलीफ सहन की, लेकिन बाबा कहते तुमको कोई तकलीफ नहीं है रावण राम राज्य स्थापन करने लिए। वो तो कितना खर्चा करते हैं, रावण का बुत बनाकर फिर उसको जलाते हैं। देखना चाहिए, यहाँ भी इस बार बहुत बड़ा बनाया था, पहले तो छोटा ये रावण घाट था, नकी लेक के उस तरफ, लेकिन अभी तो पोलो ग्राउंड पर करते, इतना बड़ा रावण भी का मेघनाथ भी और साथ साथ फिर कुंभकर्ण भी, तीनों इतने बड़े बड़े बुत बनाए। तो बाबा कहते हैं हाँ वो तो कितना खर्चा करते हैं रावण का बुत बनाकर, फिर उसको जलाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े लोग सब जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, मिनिस्टर्स भी वहां जाते हैं और वीआईपीस को भी निमंत्रण देते हैं कि आओ देखो कैसे रावण को जला रहे हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, पर समझते कुछ भी नहीं। अभी बाप समझाते हैं तो तुम बच्चों को दिल में उमंग है कि हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं, बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है, तुम हो राम की श्री मत पर। राम कहो शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिए हैं, तुम बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो श्री मत पर। कितने टाइटल बाबा ने दिए, मोस्ट वैल्यूएबल सर्वेंट हो जो श्री मत पर सेवा कर रहे हो। कहते भी हैं हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है, कितना सुख बाबा हमें देते हैं, तो सतयुग में कितना सुख हमको मिलता है, कारुण का खजाना मिलता है, वहां एवरेज आयु भी कितनी बड़ी होती है, वो है योगी, वो है योगी, यहाँ की योगी योगी जीवन से ही उनको वो प्रारब्ध मिली है, तो वो है योगी देवताएं, और यहाँ है सब भोगी। कितना अंतर हो गया, यहाँ है सब भोगी वो पावन और ये पतित, कितना रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं ना, महात्मा भी कहते हैं श्री कृष्ण को, परंतु वो तो सच्चा महात्मा है, आजकल के भी महात्मा कहलाए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो सच्चा महात्मा है, उनकी तो महिमा ही गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं, फिर महात्मा कहलाते हैं, पर श्री कृष्ण तो जन्म से ही महात्मा है, शरीर भी पावन और आत्मा तो है ही पावन। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं, तो ये बातें अभी तुमको बाप समझाते हैं। इस समय मनुष्य तो है क्या है, अनराइटियस अनहैप्पी, अनहैप्पी दुखी सुख नहीं है, अनहैप्पी। सतयुग में कैसे थे, रिलीजियस और राइटियस थे, 100% सॉल्वेंट थे, एवर हैप्पी रहते थे, वहां तो दुख का नाम निशान नहीं था, एवर हैप्पी रहते थे। तो रात दिन का फर्क है ना, अभी कलयुगी दुनिया और सतयुगी दुनिया में रात दिन का फर्क है, ये एक्यूरेट तुम ही जानते हो, ये किसको पता थोड़ी पड़ता है कि भारत हेवन से हेल कैसे बना, इतना सुंदर भारत था हेवन था, अभी वो हेल कैसे बना ये तो किसी को पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, पर समझते कुछ भी नहीं। तो बाप समझाते हैं, अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो हैं, बिरला को भी समझा सकते हो, है ना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाता रहता है बिरला, सब जगह देखो, जहां भी जिस भी बड़े शहर में देखो वहां बिरला मंदिर तो है ही है, पर अंदर तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, इतनी बड़ी सुंदर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति होती है, पर नाम रख दिया बिरला मंदिर। तो बाबा कहते बिरला वालों को भी समझाओ कि आप लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हो, उनकी इतनी पूजा करते हो, पर इनकी बायोग्राफी क्या है। बताया मैंने एक बार, यहाँ आई थी जो अभी लेडी चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, तो वो उनको योगिनी बहन लेकर आई थी और उनको थोड़ा का अलग से कोर्स कराओ तो बताया, तो हमने उनसे पूछा कि आप लोग ये बिरला मंदिर लक्ष्मी नारायण का मंदिर सब जगह बनाते हो कि आप तो क्या लक्ष्य क्या है, तो कहा कि जो पहले बिरला थे ना उनको लक्ष्मी नारायण स्वप्न में आए, स्वप्न में आए और उनको कहा कि आप मेरा मंदिर बनाओ, आप मेरा मंदिर बनाओ, हमारा मंदिर बनाओ, तो आपका धन कभी कम नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे तो आपका भी धन बढ़ता जाएगा। तो तब से ये बिरला वाले लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, हाँ, बिरला को भी तुम समझा सकते हो कि लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, क्या किया जो इन्हों के मंदिर बनाए हैं। बिगर ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना भी तो पत्थर पूजा हो गई। अब जिसकी पूजा कर रहे हैं तो वो पत्थर की मूर्ति, तो परंतु बिना ऑक्यूपेशन जाने और ऐसे पूजा करना तो पत्थर पूजा अथवा गुड़ियों की पूजा हो गई। और धर्म वाले तो जानते हैं कि क्राइस्ट फलाने समय पर आया, फिर आएगा, ऐसे भी कहते हैं क्रिश्चियन लोग कि फिर क्राइस्ट आएगा, तो वो कब आया था वो भी बताते हैं और फिर कब आएगा ये भी कहते हैं। हाँ, लेकिन ये देवताओं के लिए हम थोड़ी जानते थे कि हाँ ये थे और फिर आएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम ही जानते हो। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फखर होना चाहिए, हाँ नशा होना चाहिए, रूह को खुशी होनी चाहिए, आधा कल्प बेअभिमानी बने हो। अब बाप कहते हैं अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। हमारी आत्मा बाप से सुन रही है, हमारी आत्मा बाप से सुन रही है, और सत्संगों में कभी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमारी आत्मा आप परमात्मा से सुन रही है, ऐसे नहीं समझेंगे। ये रूहानी बाप रूहों को बैठ समझाते हैं, रूह ही सब कुछ सुनती है ना। आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, अभी हाँ वो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ ये किसने कहा, आत्मा कहती है ना, शरीर थोड़ी कहेगा। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, आत्मा ने इस शरीर द्वारा कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अभी तुम कहते हो हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रही हूँ। अहम आत्मा मम शरीर है, देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो, कर्तव्य करते हो गुप्त रीति से, तो नशा भी गुप्त चाहिए। हाँ, उल्टा नशा नहीं, बाहर का नशा, देह अभिमान का नशा नहीं, गुप्त नशा अंदर कि हम कौन हैं, तो नशा भी गुप्त चाहिए। हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बापूजी भी, हाँ बाबा कहते हैं बापूजी भी चाहता था नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अभी नई दुनिया तो है नहीं, ये पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, फिर परिस्तान बनना है। अब ये पुरानी दिल्ली, बाबा कहते कब्रिस्तान बनती है फिर परिस्तान बनना है। अभी इनको परिस्तान थोड़ी कहेंगे, अभी की दिल्ली भले कहते नई दिल्ली लेकिन परिस्तान तो नहीं कहेंगे। नई दुनिया में परिस्तान, नई दिल्ली तुम बना रहे हो, ये बड़ी समझने की बातें हैं, ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुख धाम बनाना कितना ऊंच कार्य है। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि तो पुरानी होनी ही है, दुख धाम है ना, दुख हरता सुख करता एक बाप को ही कहा जाता है। तो तुम जानते हो बाप 5000 वर्ष के बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते हैं, सुख भी देते हैं शांति भी देते हैं। दुखी भारत को सुखी भी बनाते हैं शांति भी देते हैं। मनुष्य कहते भी है मन की शांति कैसे मिले। अब शांति तो शांति धाम स्वीट होम में ही होती है, वो शांति स्वीट साइलेंस डेड साइलेंस हाँ ये तो बाबा कहते हो तो शांति धाम में ही होती है, तो जो सचमुच सुख के साथ शांति वो तो फिर यहाँ होती है सतयुग में। तो बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है शांति धाम, जहाँ आवाज नहीं, जहाँ गम नहीं, सूर्य चांद आदि भी नहीं होते, वो शांति धाम है। अभी तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान है, बाप भी आकर ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना, लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है, वो भारत का आकर ओबीडियंट सर्वेंट बना है, भारत को सुखधाम बना रहा है बच्चों की मदद से, पर दुनिया तो नहीं जानती है। अभी तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान है तो हाँ, लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है, सबको महात्मा कह देते हैं। अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो नहीं सकते, बहुत बड़ी बात है, महान आत्मा तो स्वर्ग के सिवाय और कोई हो नहीं सकते। स्वर्ग के महान आत्मा स्वर्ग के सिवाय कभी हो नहीं सकते, वहां तो आत्मा ही पवित्र है, पवित्रता थी तो पवित्रता के साथ पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, प्यूरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी प्यूरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, प्यूरिटी का ही तो मान है, देवताएं पवित्र है तब तो उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं, पवित्र को पावन और अपवित्र को पतित कहा जाता है, ये है सारे विश्व का बेहद का बापूजी। शिव बाबा क्या है, सारे विश्व का बेहद का बापूजी। ऐसे तो मेयर को भी कहेंगे सिटी फादर, फादर तो ऐसे बहुतों को कह देते हैं सिटी फादर, मेयर को कहा जाता है सिटी फादर, म्युनिसिपैलिटी का वो हेड है मेयर, तो उसको कहेंगे भाई सिटी फादर। यहाँ थोड़ी ऐसी बातें होगी, वहां थोड़ी ऐसी बातें होंगी, हर एक को फादर फादर कहे ऐसे बातें नहीं होंगी, वहां तो कायदे से राज्य चलता है, महाराजा महारानी का राज्य चलता है, राजा रानी का चलता है, कायदे से सब कुछ कायदे से है। वहां बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, अब बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो फिर क्या कहते हैं, खुद ही बुलाते हे पतित पावन आओ, तो पतित पावन आकर क्या करेगा, पावन बनाएगा ना, तो वो तो बना रहे हैं, फिर क्या कहते हैं, जब उनको हम कहते कि अभी पतित पावन आया हुआ है पवित्र बनाने, तो पवित्र बनो, तो वो लोग क्या कहते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, अगर हम पवित्र रहेंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी। उनको ये पता ही नहीं है, क्या नहीं पता है, कि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे, तब भी तो सृष्टि बढ़ी ना, वैसे थोड़ी है कि सृष्टि नहीं बढ़ी उनके राज्य में, पर वो तो पवित्र थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। तो तुम बच्चों को कितना अपोजिशन सहन करना पड़ता है, हाँ, बहुत लोग कहते ऐसे कैसे होगा, फिर यहां तक कह देते ना लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे, हाँ वो भी तो गृहस्थी में थे, तुम पवित्र रहेंगे तो फिर कैसे दुनिया चलेगी, लेकिन लक्ष्मी नारायण भले गृहस्थ में थे पर पवित्र गृहस्थ आश्रम था, योग की पैदाइश थी, वो तो नहीं है अभी, तो इसीलिए वो अंतर तो समझ नहीं रहे। तुम बच्चों को कितना अपोजिशन सहन करना पड़ता है, ड्रामा में जो कल्प पहले हुआ है वो रिपीट होता है, जो कुछ भी हो रहा है सब ड्रामा अनुसार कल्प पहले जो हुआ वही हो रहा है, ऐसे नहीं कि ड्रामा पर रुक जाना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि रुक जाओ ड्रामा पर, हाँ जो ड्रामा में होगा वही करेंगे, पुरुषार्थ हम क्यों करें, जो ड्रामा में होगा अपने आप होगा, तो परंतु बाबा कहते हैं नहीं ड्रामा पर रुक नहीं जाना है, ड्रामा में होगा तो मिलेगा ऐसे कह करके रुक नहीं जाना है। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या, स्कूल में बच्चा गया कहेगा कि ड्रामा में अगर पास होना होगा तो मैं हो जाऊंगा, तो पास होगा क्या, उसको मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, एग्जाम में अपियर होना है फिर पास होना है, तो स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएगा क्या। हर एक चीज के लिए मनुष्य का पुरुषार्थ तो चलता ही है, पुरुषार्थ बिगर पानी भी मिल न सके, है ना, पानी भी मिल न सके, कैसे चलो पानी मिल भी जाए, कोई आपको ग्लास भी पकड़ा दे और कहे पियो, चलो आपका मुख भी खोल दे, लेकिन अंदर डालना वो तो आप ही करेंगे ना, कि वो भी दूसरा करेगा, ड्रामा में होगा तो अंदर चला जाएगा, ऐसे थोड़ी है, वो तो आपको पीना पड़ेगा। इसलिए पुरुषार्थ तो जरूरी है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ बिगर पानी भी मिल न सके। सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है वो प्रारब्ध के लिए, जो पुरुषार्थ चलता है उसकी प्रारब्ध तो जरूर मिलती है, तो इसीलिए वो प्रारब्ध के लिए ये बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद के सुख के लिए। ये जो पुरुषार्थ है हमारा, ये बेहद के सुख के लिए, बेहद की प्रारब्ध के लिए ये पुरुषार्थ है। अभी है ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्रह्मा का दिन, सो ब्राह्मणों का दिन होगा। शास्त्रों में भी पढ़ते थे, ये सब पढ़ते थे, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। ये बाबा, अब ब्रह्मा बाबा अपनी बात सुनाते, ये बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे। बाबा कहते पंडित बन बैठते थे, बाबा गीता तो सुनाते थे, अपने घर में ही सुनाते थे, और कैसे अड़ोस पड़ोस के भी आ जाते थे, परिवार वाले तो बैठते थे, सवेरे सवेरे सब नहा धो करके सत्संग कराते थे बाबा गीता का, और फिर कई बार और भी शास्त्र सुनाते होंगे। तो बाबा कहते हैं अब बाप, हाँ, पंडित बन बैठते थे, अभी समझते हैं वो तो भक्ति मार्ग है। अभी समझते वो तो भक्ति मार्ग है, तो भक्ति अलग है, ज्ञान अलग चीज है। तो बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सब काले बन गए हो, सब काले बन गए हो, भले चाहे कितना भी गोरा चिट्टा हो चमड़ी कलयुग में, लेकिन है तो आत्मा, तो कोई वो सत्युगी वो को पवित्र तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम सब काम चिता पर बैठ सब काले बन गए हो। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना, पुजारी लोग अंधश्रद्धालु है, कितनी भूत पूजा करते हैं, भूत पूजा माना तत्वों की पूजा, वो जो भी पत्थर की मूर्ति या मिट्टी की या जो भी, तो कितनी भूत पूजा है, शरीर की पूजा, गोया पांच तत्वों की पूजा हो गई। इसको कहा जाता है पांच तत्वों की पूजा करना, इसको क्या देंगे नाम, व्यभिचारी पूजा। भक्ति पहले अव्यभिचारी थी, एक शिव की ही होती थी, अभी तो देखो क्या क्या पूजा होती रहती है, किस किस की पूजा करते हैं बात मत पूछो, क्या क्या पूजा होती रहती है। बाप वंडर भी दिखाते हैं, नॉलेज भी समझा रहे, बतलाते भी रहते हैं बाबा कि क्या क्या देखो हो रहा है भक्ति मार्ग में, और फिर बाबा कहते हैं कि नॉलेज भी समझा रहे हैं। कोटों में कांटों से फूल बना रहे हैं, उनको कहते ही है, उस फूलों की दुनिया को क्या कहते हैं, गार्डन ऑफ फ्लावर्स। तो कराची में एक पहरे पर एक पठान रहता था, कराची में जब यज्ञ था तो बाहर एक वो पठान रहता था, तो वो पहरे पर होता था, तो वो पठान रहता था, और वो बाबा को, बाबा के पास आता था पठान, और आकर के बाबा से दृष्टि लेता था, और जैसे दृष्टि लेता था ना ध्यान में चला जाता था, और ध्यान में जाकर के फिर वो सत्युग का बगीचा देखता था, और फिर जब ध्यान में गया फिर वापस आकर उनसे पूछते थे क्या देखा, तो कहता था अल्लाह का बगीचा देखा, और अल्लाह ने मुझे फूल दिया, खुदा का वो, खुदा ने हमें फूल दिया, तो वो कहता था। तो बाबा वही बतलाते हैं, वो पठान रहता था, वो भी ध्यान में चला जाता था, कहता था मैं बहिष्ट में गया, खुदा ने हमको फूल दिया। उनको बड़ा मजा आता था, आकर के बैठता था सभा में। तो वंडर है ना, वो तो सात वंडर्स कहते हैं इस दुनिया के, वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो स्वर्ग है, ये किसको भी पता नहीं है। तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना हाईएस्ट बाप दादा है और कितना सिंपल रहते हैं, कोई भपका नहीं बाबा में, कितना सिंपल रहते हैं। बाप की ही महिमा गाई जाती है, वो निराकार है, निरअहंकारी है। बाप को तो आकर सेवा करनी है ना, वो निराकार ही निराकार निरहंकारी, तो वो तो आके सेवा करते हैं ना। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर उनको धन दौलत दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। लौकिक में तो पिता का यही फर्ज है, हाँ उनको बड़ा करके, हाँ उनकी सेवा कर उनको बड़ा करके, धन दौलत दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं लौकिक पिता भी। बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं, क्या नहीं करते हैं लौकिक बाप अपने बच्चों को, प्यार कितना देते हैं, माथे पर चढ़ाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। तो बाप कहते हैं हम तो बादशाही नहीं लेंगे, शिव बाबा नहीं लेंगे बादशाही। सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु माया भुला देती है, इतने बड़े बाप दादा को भूलना थोड़ी चाहिए। हाँ कितना बड़ा बाप दादा, उनको भूल जाते हैं, भूलना थोड़ी चाहिए। दादा की मिल्कियत का कितना फखर रहता है लौकिक में, ग्रैंडफादर की जो अगर मिल्कियत होगी ना तो उसका बड़ा नशा होता है पोते को, क्योंकि उनको वो डायरेक्ट हकदार बन जाता है पोता, ग्रैंडफादर दादा की मिल्कियत का। तो दादा की मिल्कियत का कितना फखर रहता है। अब तुमको तो शिव बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो, आसुरी गुणों को निकाल देना चाहिए। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, निर्गुण संस्था भी है, एक है निर्गुण बालक संस्था दिल्ली में है। तो निर्गुण वहां पर हमने पूछा क्या होता है, तो कहा कि यहाँ जैसे अनाथ आश्रम की तरह होता है ना, तो वहां पर ऐसे वो अनाथों को रखते हैं, माँ बाप नहीं है, तो निर्गुण बालक संस्था, निर्गुण संस्था भी है। अब अर्थ तो कोई समझते नहीं है, निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, परंतु वो समझते थोड़ी है। तुम बच्चों को बाप एक ही बात समझाते हैं, क्या एक ही बात समझाते जो फिर तुम औरों को समझाते हो। तो तुम बोलो, अब क्या बोलो सबको, हम तो भारत की सेवा में हैं, जो सबका बापूजी है हम उनकी श्रीमद पर चलते हैं, श्रीमद भगवत गीता गाई हुई है, हम उनकी सेवा पर है, वो श्रीमद जो देते हैं वो हम सेवा कर रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी और निरअहंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है। दूसरा, ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है, प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है, बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं मिलती, तो प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। वरदान, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है, क्या है साधन, वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। हाँ, कल ये जरूर दिखाएंगे, आज से शुरू करें अव्यक्त स्वरूप की साधना, तब पावरफुल वायुमंडल बनेगा। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है, जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए, अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। तो आपके सामने जो भी आएगा वो व्यक्ति और वो व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। आपका व्यक्ति फरिश्ता स्वरूप देखकर वो व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा जो भी आपके सामने आएगा। स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या चाहिए? सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो, मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। तो उसके लिए क्या करो? उसके लिए स्वमान क्या रखो? मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। और योग अभ्यास क्या करो? मैं आत्मा राजा अकाल तख्त नशीन हूँ, मन की मालिक बन, मन में सदा समर्थ संकल्प को इमर्ज कर अपनी पावरफुल मनसा से वायुमंडल में चारों तरफ अच्छे शुद्ध वाइब्रेशन फैला रही हूँ। धारणा क्या करो? करावन हार की स्मृति से कर्म करो। वो करावन हार करा रहा है, मैं करण हार इन कर्म इंद्रियों से भी करा रही हूँ। चिंतन क्या करो? मन की एकाग्रता क्या होती है इस पर चिंतन करो। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में रहेंगे, अभी हम बाबा की याद में रहेंगे और उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने सब बैठे रहेंगे, आज का प्रोग्राम आपको सुनाएंगे।